पृष्ठ संख्या 183, अध्याय 10, बाद के संत। दादू के एक समकालीन थे वीरभान, जिन्होंने विख्यात साध या सतनामी संप्रदाय की स्थापना की। उनका जन्म दक्षिण पूर्व पंजाब में नारनौल के पास बिजेशर में 1543 ईस्वी में हुआ था। वे उदयदास के जरिए रैदास से संबंध थे। वे कठोर एकेश्वरवादी थे और ईश्वर को सतनाम के नाम से संबोधित करते थे। वे अपने गुरु को अपनी शिक्षा के प्रेरणा स्रोत मानते थे और स्वयं को उधे का दास कहते थे, और उधे को वे मालिक का हुक्म अर्थात ईश्वर का आदेश अर्थात ईश्वर के साक्षात शब्द। इस संप्रदाय की शिक्षाएं हिंदी भाषा में हैं और उनके संग्रह को पोथी कहा जाता है, जिसे सिखों के ग्रंथ के समान ही सम्मान दिया जाता है। पुस्तक को जुमलाघर या चौकी में पढ़ा जाता है और शाम को पुरुष स्त्री और बच्चे उपासना करते हैं। साथ जाति और पद का भेदभाव नहीं मानते और वे साथ में खाते हैं और पीते हैं और अपने संप्रदाय के भीतर ही विवाह करते हैं। वे अपराध के लिए तलाक की अनुमति देते हैं और इसका दंड होता है संप्रदाय से निष्कासन। वे एक ईश्वर की उपासना करते हैं और उसे सतनाम कहते हैं। वे ईश्वर का कोई भौतिक रूप नहीं रखते और वे मूर्ति या मनुष्य के सामने नहीं झुकते। उनकी पूजा में ध्यान और सदाचार का पालन होता है और उनका अंतिम लक्ष्य ईश्वर में विलीन हो जाना है। वे नशा और पशु आहार से दूर रहते हैं और नैतिकता का कठोर मापदंड बनाए रखते हैं और एक दूसरे का दमन नहीं होने देते। वे वैध तरीकों से ही अपनी आजीविका पर विश्वास करते हैं और धन की असमानता को निरुत्साहित करते हैं और गुप्त रूप से दान देते हैं। उनके मुख्य मठ पंजाब में दिल्ली और रोहतक, उत्तर प्रदेश में आगरा, फर्रुखाबाद और मिर्जापुर और राजस्थान में जयपुर में है। जब औरंगजेब के समय उन्होंने विद्रोह किया तो वे बहुत प्रसिद्ध हुए। 1672 ईस्वी में खाकी खान उनके विद्रोह का वर्णन करते हुए उन्हें श्रेष्ठ चरित्र का बताता है, किंतु ईश्वरदास नागर उन्हें गंदा और क्रूर कहता है। उन्हें ऐसा इसलिए कहा गया है कि वे हिंदुओं और मुसलमानों में भेद नहीं करते थे। यदि उपदेश में दिए गए उनके 12 हुक्म का पूरा उल्लेख करना ठीक होगा, वे इस प्रकार है। 1. केवल एक ईश्वर को मानो, जिसने तुम्हें रचा और जो तुम्हें नष्ट कर सकता है, जिससे श्रेष्ठ कोई नहीं है, और इसलिए केवल वही पूजा करने योग्य है। न कि पृथ्वी, न पत्थर, न धातु, न लकड़ी, न पेड़, न कोई रची हुई वस्तु। केवल एक ही ईश्वर है और एक ही वचन है जो पाखंड का चिंतन करता है, पाखंड को मानता है और जो पाप करता है और नर्क में गिरता है। 2. विनम्र बनो, संसार का मोह मत करो, अपने पंथ का निष्ठा से पालन करो, अपने पंथ के बाहर के लोगों से संसर्ग मत रखो और अजनबी की रोटी मत खाओ। 3. कभी झूठ मत बोलो और न किसी भी वस्तु, धरती या पानी के बारे में, पेड़ों और जानवरों के बारे में कभी भी बुरा मत बोलो। जीव को ईश्वर की प्रार्थना में लगाओ। कभी धन, भूमि, जानवरों की या चारा गाह की चोरी मत करो। अपनी संपत्ति को दूसरों की संपत्ति से अलग समझो और जो भी तुम्हारे पास है उसी से संतोष करो। कभी बुरा मत सोचो। अनुचित चीजों, चाहे वे मनुष्य हो, स्त्रियां हो, नित्य हो या प्रदर्शन हो, पर दृष्टि मत डालो। 4. बुरे प्रवचन या कोई अन्य बात मत सुनो, केवल सृजनहार की प्रार्थना सुनो। न कहानियां सुनो, न गप, निंदा, संगीत सुनो। भजन को छोड़कर कोई गायन मत सुनो। उस समय संगत को कोई वाद्य यंत्र हो भी तो वह मस्तिष्क में हो। 5. किसी भी चीज का लालसा मत करो, न शरीर की, न धन की, किसी की चीज मत लो। ईश्वर सभी चीजों का दाता है। जितनी तुम्हारी उस पर आस्था होगी उतना तुम्हें मिलेगा। 6. जब यह पूछा जाए कि तुम क्या हो तो स्वयं को साथ बताओ, जाति की बात मत करो, विवाद में मत पड़ो, अपने पंथ पर पक्की निष्ठा रखो, मनुष्यों पर अपनी आस्था मत रखो। 7. सफेद कपड़े पहनो, किसी रंग काजल मिस्सी या मेहंदी का उपयोग मत करो और अपने शरीर या मस्तक पर जाति संबंधी चिन्ह मत लगाओ और सुमरणी माला या जवाहरात मत पहनो। 8. नशीली चीजें मत पियो या खाओ, पान मत खाओ, इत्र का उपयोग मत करो, तंबाकू मत पियो, अफीम मत चबाओ या सूंघो, अपने हाथ ऊपर मत करो, अपना सर मूर्ति या मनुष्य के सामने मत झुकाओ। 9. किसी के प्राण मत लो, न व्यक्तिगत हिंसा में पड़ो, न निंदात्मक साक्ष्य दो और न ताकत से कोई चीज हथियाओ। 10. मर्द एक पत्नी से और स्त्री एक पति से विवाह करें। मर्द स्त्री द्वारा छोड़ी गई चीजें न खाए, किंतु जैसी प्रथा हो मर्द की छोड़ी चीज को स्त्री खा सकती है। स्त्री मर्द की आज्ञाकारी हो। 11. साधु की वेशभूषा धारण मत करो, न भिक्षा मांगो, न उपहार स्वीकार करो, जादू टोने से मत डरो और न उसको उसकी शरण लो, किसी को कुछ बताने के पहले उस बात की जानकारी ले लो, साधुओं की बैठके ही एकमात्र तीर्थ है, किंतु उन्हें अभिवादन करने से पहले यह समझ लो कि कौन साधु पवित्र है। 12. साध को दिनों ग्रहण महीनों को लेकर या चिड़ियों के चिल्लाने या देखने को लेकर अंधविश्वासी नहीं माने, वह केवल ईश्वर की इच्छा की कामना करे। इन आदेशों पर टीका करना व्यर्थ है, उनका कठोर सामान्य बुद्धि उतनी ही स्पष्ट है जितने कि इस्लाम से लिया गया उनका कठमुल्लापन, जो उससे भी आगे निकल जाता है। बीरभान की आवाज एक विस्फोट के समान लगी होगी और इसने अंधविश्वास और अंधकार के विरुद्ध प्रकाश और विवेक के लिए संघर्ष करने वाले लोगों को एकत्र किया होगा। निश्चित ही वह एक आश्चर्यजनक युग रहा होगा जिसने कबीर और नानक, दादू और बीरभान जैसे लोग एक साथ हुए और जिसमें उनके शुद्धिकरण के उपदेश प्रसारित होना संभव हुआ। साध लोगों का विवरण उनके पंथ के गहन भक्ति में पहलू को प्रदर्शित करने वाली उनकी एक कविता से समाप्त किया जा सकता है। तुम्हारे बिना मेरी देह में पीड़ा होती है, मैं तुम्हारे द्वार में विलाप कर रहा हूँ, अतः प्रकट हो जाओ और मुझे तुम्हें देखने दो। हे मेरे भगवान, मैं तुम्हें प्रार्थना करता हूँ कि अब देर मत करो, रोते हुए और विलाप करते हुए मैं अपना धीरज खो बैठा हूँ, मैं तुम्हारे दर्शन के बिना नहीं रह सकता, मेरे भीतर ज्वालाएं उठ रही हैं और मेरी देह को नष्ट कर रही हैं, मेरी पीड़ा कौन सह सकता है, मैं दोषों और पापों के पूर्ण हूँ, क्या तुम्हें मेरे ऊपर दया आएगी, मेरी त्रुटियों और भूलों पर ध्यान मत दो, ए पाप से आत्मा को मुक्त करने वाले मेरा मन बचाए रखो, एक क्षण के लिए मेरा विस्मरण मत करो और मुझ पर दया करो, मुझे अपना रूप दिखाओ और हाल में किए मेरे पापों को भूल जाओ, मुझ पर अपनी पूरी दृष्टि डालो और मुझे अपने प्रेम से वंचित मत करो। लाल दास और बाबा लाल 17वीं सदी में हुए। लाल दासी पंथ के संस्थापक अलवर के थे और वे मेव नामक आदिम जनजाति के थे। उनकी शिक्षाएं कबीर के समान ही थी। पंथ के आचार्य विवाहित पुरुष हैं और भजनों का संगीत के साथ गाथा गाया जाना उनकी उपासना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बाबा लाल क्षत्रिय थे और उनका जन्म जहांगीर के समय मालवा में हुआ था। उनके गुरु का नाम चैतन था, जिनके पास वे लाहौर गए। वे सरहिंद के पास डेहनपुर में बस गए और वहां उन्होंने एक मंदिर और एक आश्रम बनवाया। अभागा दारा शिकोह उनके शिष्यों में से एक था और उसने संत से कई बार भेंट किए, जिनमें उसने धार्मिक प्रश्नों पर उनसे निर्देश लिए। इन भेंटों में हुआ वार्तालाप फारसी में लिखी किताब नादिर उन उकात नामक एक किताब में संकलित है। उपदेश दाराधिको और बाबा लाल के बीच हुए संवाद के रूप में है। बाबा लाल का ग्रंथ क्या है, वे इन शब्दों में जवाब देते हैं। प्रेम का संप्रदाय अन्य संप्रदाय से अलग होता है। ईश्वर उनकी आस्था और संप्रदाय है जो उससे प्रेम करते हैं, किंतु हर पंथ के अनुयायियों के लिए श्रेष्ठ यही है कि वे अच्छा करें। और वे हाफिज की कविता को उद्धृत करते हैं, सभी धर्मों का लक्ष्य समान है, सभी लोग अपनी प्रियतम को खोज रहे हैं। समझदार और मूर्ख में क्या अंतर है, पूरा जगत प्रेम का घर है, मस्जिद या गिरजे की बात क्यों की जाए। बाबा लाल और लालदास किसी भी रूप में उस धार्मिक संश्लेषण के एकमात्र प्रतिनिधि नहीं थे जिसने 17वीं सदी में हिंदू धर्म को इस्लाम से जोड़ने का प्रयास किया। ऐसे असंख्य संत और आचार्य हुए जिन्होंने ऐसे ही विचारों की पैरवी कर सके, किंतु दुर्भाग्य से उनमें से ज्यादातर के नाम और रचनाएं लुप्त हो गई हैं, किंतु दबिस्तान में उन लोगों के नाम दिए गए हैं जिनके साथ लेखक का संपर्क हुआ या जिनकी प्रतिष्ठा के बारे में उसने सुन रखा था। पिराना कोहाली के बारे में लिखते हुए वह वैरागियों और अन्य पंथों के बारे में कहता है, यह पंथ किसी प्राणी को हानि नहीं पहुंचाता, वे अवतारों को नहीं मानते और कहते हैं कि ईश्वर पुनर्जन्म और एकाकार होने से मुक्त है। जो परमात्मा की एकता और संगठन पर विश्वास करते हैं उनके अनुसार ईश्वर आत्मीय मैत्री से प्रभावित नहीं होता। हरिदास जिनका निधन 1055 हिजरी 1644 ईस्वी में हुआ था के द्वारा स्थापित नारायणी पंथ के बारे में वह कहता है, क्या पंथ मूर्तियों और मंदिरों के बारे में और काबा या किसी भी प्रकार की पूजा के बारे में नहीं जानता। वे ईश्वर के ज्ञान पाने या उसके साथ एकाकार होने के लिए कुछ नहीं करते। वे नारायण या परमात्मा की उपासना तक स्वयं ही सीमित रखते हैं। नारायण से ही उनका नाम नारायणी पड़ा। वे संसार के मामलों से नहीं पढ़ते। त्याग और वैराग्य उनके नियम हैं। वह गोसाई जानी और उनके शिष्य का निम्नलिखित विवरण देता है, वे अपने स्वामी का जहान कहते हैं और उसके अनुयायियों ने जिनमें हिंदू और मुसलमान दोनों होते हैं वैष्णवी पंथ अपना लिया है। यह इस प्रकार है, वे किसी भी प्राणी को हानि नहीं पहुंचाते, वे हिंदुओं और मुसलमानों के दूसरे पंथों के लोगों के साथ मित्रता करने से बचते हैं। वे पूर्व की ओर मुंह करके दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। ईश्वर के देवताओं के और पैगंबर के नाम उनकी जबान पर होते हैं, जैसे अल्लाह, मिकाइल, इज़राइल, जिब्राइल, मुहम्मद और अन्य। वे मृतकों को दफनाते हैं, वे अपनी शक्ति भर दूसरों को लाभ पहुंचाते हैं। वे उनके कई दरवेश व्याधि से पीड़ित होने का बहाना करते हैं और भिक्षा मांगते हैं, और इस प्रकार वे जो भी एकत्र करते हैं वे अंधों और लंगड़ों तथा उस प्रकार के लोगों को बांट देते हैं। वह अन्य अनेक के बारे में बताता है जो अपने विचारों में उतने ही स्वतंत्र थे। उनमें थे शिवरीना, श्रीदाई, हरिरामपुरी, सबरा, जादू, परतापमल, चादाह, हीरामन, कायस्थ का पुत्र विनावली, आजदाह ब्राह्मण और मिहरचंद सुनार। धरनीदास और प्राणनाथ 17वीं सदी के उत्तरार्ध में हुए, ये 18वीं सदी के प्रारंभ तक जीवित रहे। धरनीदास 1656 में पैदा हुए थे और वे छपरा जिले के मंझी गांव में रहते थे। वे जाति से कायस्थ थे और चंद्रहास के शिष्य थे। उनके उपदेश उनकी 2 रचनाओं सत्य प्रकाश और प्रेम प्रकाश में निहित हैं। उनके पंथ के अनुयायी आज भी सारे भारत में हैं। नीचे लिखी कविता उनके विचारों का परिचय देती है। दीपक घर के भीतर है, न तो उसमें बाती है, न तेल है और न ही लौ है। धरनी कहते हैं कि हमें विचार, शब्द और काम से ईश्वर से जुड़ना चाहिए। बिना आँखों के दिखता है और बिना कान के आवाज सुनी जाती है। धरनी ने जब प्रकाश का उदय होते देखा तो वह आंधी आधी ऊंचाई तक ही चढ़ पाया और उसने अत्यंत अतुलनीय रूप की मनमोहक छवि देखी। धरनी सिंहासन शरीर में है और सुल्तान उस पर बैठा है। वहां वह सभी जीवन और जहान का भरपूर मुजरा ले रहा है और उसने तुम्हें पानी से उत्पन्न किया है। सुनो हे मेरे मूर्ख मन, पति ऐसा है जिसे खुदा कहा जाता है। तुम 10 माह तक जले और जब तुम असहाय हो ये तब तुम हटे। तुमने अपनी जिह्वा से वादा किया और निरर्थक रूप से शब्द लिखवाए और तब तुमने वादा किया हे मेरे मूर्ख मन कि तुम यदि तुम पीड़ा से मुक्त कर दिए गए तो इस बार उसकी आज्ञा का पालन करोगे। धरनी पंथ के संस्थापक प्राणनाथ क्षत्रिय थे और बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में 17वीं सदी के अंतिम भाग में हुए। उनका पन्ना के राजा छत्रसाल पर बहुत प्रभाव था। ऐसा कहा जाता है कि यह इस कारण था कि उन्होंने वहां हीरे की खदान की खोज की थी। वे इस्लाम के धर्म ग्रंथों से अच्छी तरह परिचित थे और उन्होंने ऐसे ग्रंथ की स्थापना करने का प्रयास किया जिसमें दोनों धर्मों का संगम हो। गुजराती में लिखी अपनी रचना कुलजम स्वरूप में वे कुरान और वेदों की इबारत साथ में रखते हैं जिससे यह दिखाया जा सके कि ये दोनों बेमेल नहीं हैं। वे मूर्तियों की पूजा, जाति भेद और ब्राह्मणों के आधिपत्य की समाप्ति की घोषणा करते हैं। हिंदू और मुसलमान धर्मों की वास्तविक एकता के प्रति अपने शिष्यों की स्वीकृति परखने के लिए उनके पंथ में दीक्षा लेने के लिए दोनों धर्मों के समाज में भोजन करना जरूरी है। उन्होंने 14 ग्रंथ लिखे जो सभी काव्य थे। उनकी रचना कियामत नामा से कुछ उद्धरण नीचे दिए जा रहे हैं। उम्मत के पास जाओ और उन्हें बचाओ, विश्वासियों को उठाओ क्योंकि कयामत का दिन आ गया है। मैं तुम्हें वह बता रहा हूँ जो कुरान में कहा गया है और मैं तुम्हें कहानी बता रहा हूँ। जो व्यक्ति नीचे लिखे का विशेष नेता है उसे सावधानी से खड़े होना चाहिए। मैं तुम्हें केवल यह चेतावनी दूंगा कि 11वीं सदी में तुम भयमुक्त हो जाओगे। तुम सभी का, चाहे तुम हिंदू हो या मुसलमान, समान धर्म होगा। वे पिछली 11 सदियों के इतिहास का वर्णन करते हैं, कैसे ईसा मसीह पहले आए और बाद में मुहम्मद आए और उनके बाद इमाम आए। इसके बाद वे आदम के पतन के बारे में और मानव जाति को खत्म करने के शैतान के संकल्प के बारे में बताते हैं। इसके बाद वे विभिन्न जूडा, मुस्लिम और हिंदू भविष्यवाणियों की चर्चा करते हैं जो नीचे लिखे मिशन के साथ अंतिम पैगंबर के आने की पूर्व घोषणा करती है। दो दुनियाओं में संघर्ष हुआ और कर्म कांड तथा शरीयत बचे रह गए। उसने सभी को हकीकत और मारिफत का रास्ता बताया। उसने आसमान से बादल छाड़ दिए और सूर्य के प्रकाश से ब्रह्मांड को प्रकाशित किया और दुनिया के लोगों को एक कर दिया। संपूर्ण सृष्टि खुदा को पुकारती है, अपना बयान उसे देती है और उसके आदेश का पालन करती है। सभी मालिक के सूरत को या अल्लाह के कलाम को पूजते हैं। जगजीवन बुल्ला साहेब, केशव चरणदास, उनकी दो स्त्री, भक्तों, सहजो और दयाबाई, गरीबदास, शिवनारायण और राम सनेही 18वीं सदी में सक्रिय थे। जगजीवन दास का जन्म 1682 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में सारदहा में हुआ था। वे चंदेल ठाकुर थे और कबीर की विचारधारा के थे। उन्होंने अपने जीवन का ज्यादातर हिस्सा बाराबंकी और लखनऊ के बीच में स्थित कोटवा में बिताया। उनकी शिक्षाएं उनकी तीन मुख्य रचनाओं में है, ज्ञान प्रकाश, महाप्रलय और प्रथम ग्रंथ। उनके शिष्य सभी जातियों में से थे, ब्राह्मण, ठाकुर, चमार और मुस्लिम। उन्होंने स्वयं और इस्लाम के बीच विचारों का कुछ संचार स्थापित करने में सफलता पाई। उनके कम से कम दो शिष्य तो मुसलमान थे। उन्होंने या तो पुरानी संत नामी पंथ को पुनर्गठित किया जो औरंगजेब की सेनाओं द्वारा पराजित हुआ था, या फिर उन्होंने उसी नाम से नया पंथ स्थापित किया। उन्होंने ईश्वर की एकता का सिद्धांत पढ़ाया जिसे वे निर्गुण मानते थे। वे आत्मसमर्पण और संसार के प्रति उदासीनता पर बहुत जोर देते थे। वे यह मानते थे कि मानव प्रयासों का लक्ष्य गुरु की सहायता से ईश्वर में विलीन हो जाता है। सत्य, विनम्रता और हानिकारक न होना उनके नैतिक नियमों में मुख्य सद्गुण थे। नीचे लिखी कविता में वे धर्म की आंतरिकता का उपदेश देते हैं। माला पहनने से या मस्तक पर तिलक लगाने से क्या होता है? भोजन त्यागने और उपवास करने या केवल दूध पीकर रहने से क्या होता है? पंचाग्नि के समान तप करने या चमड़ा पहनने से या ऊपर चेहरा करके खड़े रहने से या धुएं पर बैठने या नमक त्यागने से क्या होता है? बैठने या खड़े रहने या मौन रहने और नाम जपने का विद्वान व्यक्ति होना या व्याख्याता होना या ज्यादा ज्ञान हासिल करने का क्या मूल्य है? पत्नी को छोड़कर वन में रहकर साधना क्यों की जाए? दुनिया यह भूल जाती है कि प्रेम के बिना सभी व्यर्थ है। घर में रहो, सभी दिशाओं की ओर मत भागो, एक ही पर ध्यान दो जो विचारातीत और आधारातीत है। मस्तिष्क के आकाश के विस्तार में उसकी छवि दिखती है। वह सभी से भिन्न है। जो आस्था रखता है वह उसे प्राप्त होता है। उसने अपनी नियति को सुनिश्चित कर लिया है। हे जगजीवन, अपना सर गुरु के चरणों पर रखो और तब तुम त्रुटियों के जान से बच जाओगे। ईश्वर का ध्यान करने के बारे में यहाँ बताया गया है। सब फिक्र छोड़ दो और जिक्र में डूब जाओ। श्रुत के तोते को आकाश में बैठने दो और हर का नाम जपो और उसे ऐसा ही सिखाओ। साईं एक है, उसे एक ही जानो। अपने मन में किसी प्रकार का संदेह मत आने दो। जगजीवन दास कहते हैं, श्रुति को वहां देखो, दोनों हाथ जोड़कर ईश्वर की आराधना करो। और सभी मनुष्य अनिवार्य रूप से समान माने गए हैं। ऐ साधु, सभी में एक ही प्रकाश चमकता है। अपने मस्तिष्क में उसके बारे में विचार करो, दूसरा कोई नहीं है। खून और शरीर एक ही है, उसमें कोई ब्राह्मण या साधु नहीं है। किसी को मर्द कहते हैं, किसी को औरत, सभी में गैवी पुरुष है। बुल्ला साहिब का वास्तविक नाम बुला कीराम था और वे कुनबी जाति के थे। उन्हें गुलाल साहिब के खेतों को जोतने के लिए रखा गया था, किंतु गुलाल साहिब बुलाकी राम की पवित्रता और भक्ति से इतने प्रभावित हुए कि वे स्वयं ही उनके शिष्य हो गए। बुल्ला यारी साहिब के शिष्य थे और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से के भुरकुदा गांव में आचार्य के रूप में रहने लगे। उनके वचन यौगिक क्रियाओं के संदर्भ से भरे पड़े हैं और ऐसा लगता है कि वे प्राणायाम को उपासना या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते थे, किंतु वे आम भक्त के समान थे। उनके शिक्षाओं का एक उदाहरण यहाँ दिया जा रहा है। जो महबूबा पर दीवाना है वह निर्गुण के घर में प्याला पीता है। वह निर्गुण है, त्रिकुटी की लक्ष्य है और भक्तों का सत्संग ज्ञान का जरिया है। हर क्षण निर्गुण के घर जाओ और दिन की आठों घड़ी मदमस्त रहो। हे बुल्ला, लोगों को निर्गुण के बारे में बतलाओ और तुम्हें स्वर्ग का रहस्य प्राप्त होगा। और इस प्रकार के रोजमर्रा ईश्वर पर अपनी निर्भरता को प्रकट करते हैं। हे ईश्वर, मेरी हाजिरी लो और उसे दफ्तर में दर्ज कर लो। मैं एक गरीब सैनिक हूँ, मुझे रोज कुछ दो। केशवदास जाति के बनिया थे और एक मुस्लिम संत यारी साहिब के संप्रदाय के थे और दिल्ली में शिक्षा देते थे। उनकी चेतावनी नीचे दी गई है। उसके पास दौलत, निशान, प्रदर्शन, खुदी और स्वाभिमान है। वह दुनिया की किसी भी आत्मा पर दया नहीं दिखाता। वह अच्छी तरह जानता है कि यह वैभव अस्थिर है और मृत्यु अपना जाल लेकर उसे एक क्षण में मारने के लिए घूम रही है। तंबुओं और हाथियों और घोड़ों के रही सरजाम और सजावट भ्रामक है। हरि के नाम के अलावा उनमें से कोई भी प्रयाण के समय काम नहीं आएगा। मैं तुम्हें बारंबार चेतावनी देता हूँ, घमंड और माया का मोह छोड़ो। हे केशव, तुम क्यों कामना की भांति भ्रांति से क्यों उत्तेजित हो? चरण दास का जन्म राजपुताना के मेवाड़ के देहरा गांव में 1703 ईस्वी में हुआ था। वे जाति से धूसर बनिया थे और उन्होंने 1730 के लगभग दिल्ली में अपना पंथ स्थापित किया। वे एक गृहस्थ का जीवन बिताते थे और स्त्री और पुरुष दोनों को अपना शिष्य बनाते थे। स्त्रियों में सहजो और दयाबाई ने अपनी वाणी के द्वारा प्रसिद्धि प्राप्त की। उनके उपदेश कबीर के समान ही थे। उसमें ईश्वर की एकता, ईश्वर के नाम पर भरोसे के मूल्य, भक्ति की जरूरत और गुरु की जरूरत पर जोर देते हैं। गुरु को वे दैवी मानने के लिए कहते थे। उनका निधन 1780 में हुआ। चरण दास ने मूर्ति पूजा की। वे कहते हैं, पति पर नजर रखो, तुम्हें अन्य किसी आदमी से क्या काम है। सभी देवताओं को अकेला छोड़ दो और हरि के नाम का जप करो। गुरु के लिए उनके मन में असीमित श्रद्धा थी। वे कहते हैं, गुरु शिव के समान है जो तुम्हें जगाता है। गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही विष्णु है, वह तुम्हारी रिक्तता भरता है। गुरु गंगा के समान है जो सभी पापों को धो देती है। गुरु सूर्य के समान है जो सभी अंधकार को हटा देता है। उनकी भक्ति का एक उदाहरण यह है, हे गरीब नवाज, मेरी इज्जत की रक्षा करो। मेरी सब बातें गलत हैं, कौन इन्हें सीधा करेगा। हे हरि, तुम भक्तों के प्रेमी, पतितों के उद्धारक कहे जाते हो। लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करो। उन्हें ऐसी दृष्टि से देखो जो उनके ताप को शीतल कर दे। तुम जहाज हो, मैं तुम्हारा कर्मचारी हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर अन्यत्र नहीं जा सकता। हे हरि, यदि तुम मुझे दंड दोगे और मुझे जहाज से फेंक दोगे तो मुझे कोई ठिकाना नहीं मिलेगा। हे ईश्वर, सारा संसार जानता है कि चरण दास ने स्वयं को तुम्हारी शरण में डाल दिया है। यदि फिर उस पर लोग हंसते हैं तो तुम्हारी ही बदनामी होगी। कृपया उसके बारे में सोचो। सहजो और दया भाई दो बहनें थीं जो अपने गुरु चरण दास की जाति की ही थीं। उनकी कविताएं प्रेम की कोमलता से परिपूर्ण हैं। गरीब दास 1717 से 1778 ईस्वी तक पंजाब के रोहतक जिले के छुतनी गांव में रहे। वे जाति से जाट थे और गृहस्थ थे। वे कबीर की विचारधारा के थे और परिणाम स्वरूप उनकी कविताएं फारसी शब्दों और सूफी संकेतों से भरी पड़ी हैं। उदाहरण के लिए, हे साहिब, अपने अर्श में मेरी प्रार्थना का स्वर सुनो। तुम मेरे पिता और माता हो और तुम कृपालु हो। बेटे के सम्मान की रक्षा करना पिता का काम है। मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि हे रचयिता, मेरा शरीर, मस्तिष्क और संपत्ति आपको समर्पित है, मुझे दर्शन दो। वे यह भी कहते हैं, सदाचरण, धैर्य, भेदभाव, समझ, दया और निरंतर धर्म, अक्ल, यकीन और ईमान, और तुम वह लक्ष्य पालोगे जो उनकी हकीकत है। राम सनेही संप्रदाय के संस्थापक रामचरण दास का जन्म जयपुर क्षेत्र में सुरसेन में 1718 में हुआ था। वे पहले रामावत थे, किंतु बाद में वे मूर्ति पूजा के घोर विरोधी हो गए और इसलिए उन्हें ब्राह्मणों ने प्रताड़ित किया। उनके संप्रदाय के मुख्यालय शाहपुर में है, किंतु उनका प्रतिनिधित्व अन्य कई नामों में है। उनका प्रतिनिधित्व अन्य कई स्थानों में है। इस संप्रदाय में केवल साधु है और इसमें साधारण लोग सदस्य नहीं होते। वे मूर्तियों की पूजा नहीं करते। उनके धार्मिक अनुष्ठान कुछ सीमा तक मुसलमानों के समान है। पूजा गृह में हर दिन 5 बार उपासना होती है। संप्रदाय में किसी भी जाति के पुरुष शामिल किए जाते हैं। उनका धार्मिक और नैतिक अनुशासन कठोर है और उसे लागू करने के लिए नियमित अधिकारी होते हैं। शिव नारायणी संप्रदाय 18वीं सदी के मध्य के लगभग 1734 ईस्वी स्थापित किया गया था। इसके संस्थापक स्वामी नारायण सिंह नरौनी राजपूत संप्रदाय के थे और बलिया जिले के रसरा के पास के चंद्रावर के निवासी थे। इस संप्रदाय के 3 आश्रम बलिया जिले में और 1 गाजीपुर में है। शिव नारायणी लोग पार ब्रह्म की उपासना करते हैं और अपने ग्रंथ की पूजा करते हैं। हर वर्ग के लोग बिना जाति या वर्ग के भेदभाव के इसमें स्वीकार किए जाते हैं। जब संप्रदाय के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार उसकी इच्छानुसार दफनाकर, जलाकर या नदी में फेंक कर किया जाता है। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह इस संप्रदाय के संस्थापक का शिष्य था, जिसका प्रमाण नीचे लिखी कविता है। उसने मोहम्मद शाह को पढ़ाया और उसकी मुद्रा लेकर पंथ चलाया। बादशाह की निष्ठा ने संप्रदाय को प्रतिष्ठा दी, जिससे उसे लोकप्रियता मिली। मुद्रा अभी भी मुख्यालय में रखी है। 18वीं सदी के आखिरी और 19वीं सदी के पहले भाग में सहजानंद, दुलनदास, गुलाल, भीका और पलटू दास हुए। वे उस महान लहर का प्रभाव थे जो 15वीं सदी में कबीर के साथ उठी थी और जो बड़ी तीव्रता और गति से सारे भारत में अगली 3 सदियों में फैली और जो 18वीं सदी के खत्म होते होते क्रमशः लुप्त हो गई, जिससे कि वह सांस्कृतिक खालीपन बना जिसमें यूरोपीय धाराएं गिरने लगी। ये सभी भक्त एक से विचारों से प्रेरित हुए। वे उन विचारों का पर जोर देने वाले और उन्हें लोकप्रिय बनाने वाले बने। उन्होंने धार्मिकता में शायद ही कुछ जोड़ा और भव्य काव्य भक्ति काव्य के संपन्न कोष में कोई महान मूल्यवान कोई चीज जोड़ी। सामाजिक स्पंदन समाप्त हो गया था। साम्राज्य टुकड़े टुकड़े बिखर रहा था और समाज झगड़ों और अव्यवस्था से क्षत विक्षत हो गई थी। ऐसी स्थितियों में मनुष्य के मस्तिष्क स्पंदनहीन हो गए और उनकी गतिविधियां रुक गईं। भारत ने अब सृजन करना बंद कर दिया था। स्वामी नारायणी संप्रदाय के संस्थापक सहजानंद का जन्म 1780 में अयोध्या में हुआ था। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना की शिक्षा दी। उस ईश्वर को 2 कृष्णा या नारायण कहते हैं। उस ईश्वर को वे कृष्ण या नारायण कहते थे, जिसका अवतार वे खुद थे। उन्होंने पशुओं की हत्या करने और उनका मांस खाने, मदिरा पान या नशे का निषेध किया। उन्होंने कठोर यौन संबंधों पर जोर दिया और चोरी, लूट, झूठे दोषारोपण, आत्महत्या और अन्य दोषों की निंदा की। उन्होंने जाति भेद नहीं देखा किया और उन्होंने मूर्तियों की पूजा को रद्द किया। उनके पुरोहित अविवाहित रहते थे। उनके विचार पश्चिमी भारत के कोलियों, भीलों और काठियों में फैले। उन्हें मराठा पेशवा ने प्रताड़ित किया, किंतु उन्होंने बिना प्रतिरोध के कष्ट सहने के सिद्धांत का पाठ पढ़ाया और परिणाम स्वरूप उनके अनेक अनुयायियों को पीट कर मार डाला गया। दुलनदास सतनामी संप्रदाय को पुनर्जीवित करने वाले जगजीवन दास के शिष्य थे। वे सोमवंशीय क्षत्रिय थे और रायबरेली जिले में रहते थे। अपनी रचनाओं में वे मंसूर, शमसी, तबरीज, निजामुद्दीन, हाफिज के बारे में कहते हैं। उनकी ऐसी एक रचना नीचे दी गई है। अब हृदय का दुख तिरोहित हो गया है। प्रेमिका नजरों के सामने आ गई है। संतों के सत्संग में रहते हुए मैंने सच्चे नेता के सामने अपना सर झुकाया है। हर क्षण मुझे कल्पना में उसका चेहरा दिखता है और उसकी छवि मेरे हृदय में चमकती है। बू अली, कलंदर, फरीद और तबरीज उसी आस्था का गीत गाया है। निष्ठा और धैर्य से उसने मुझे अल्लाह का दर्शन कराया है, जो कि कालातीत और अगोचर है। लोगों, जीवन गुरु जगजीवन है। उस दुल्हन ने अपनी प्रेमिका को हृदय में रख लिया है और अनोखे पति अदृश्य हुजूर ने मेरे हृदय में प्रवेश कर लिया है। गुलाल का जन्म 18वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में हुआ था। वे गाजीपुर जिले के बसारी के थे। वे जाति के क्षत्रिय थे और बुल्ला साहिब के शिष्य थे। नीचे लिखी पंक्तियां उनके काव्य कौशल और धार्मिक आस्था का परिचय देती हैं। मस्तिष्क का भौरा वसंत गा रहा है, वह संगीत अनंत आकाश में गूंज रहा है। कमल खुलता है और भौरा गुनगुनाते हैं। प्रकाश अपनी चमक का विस्तार करता है। हृदय उसे बारंबार देखने के लिए आनंद से भर उठता है। जब मस्तिष्क उलझ जाता है तब वह जाल में फंसता है। प्रकाश की धारा एक के बाद एक लहर के रूप में बह रही है। मेरा हृदय चरण कमल पर रखा है। आत्मा का न तो जन्म होता है, न वह जाती है और न उसकी मृत्यु होती है। प्रसन्नता से वह अमृत बारंबार पीती है। ईश्वर अगम्य है, समझ के परे और अदृश्य है। मैंने अपनी आंखों से ईश्वर को देखकर पाया है। गुलाल कहते हैं कि मेरी कामना पूरी हुई, मैंने यम पर विजय पा ली है और प्रकाश में अपना घर पा लिया है। भीखा गुलाल के शिष्य थे। उन्होंने गाजीपुर जिले में शिक्षा दी। अपने गुरु के निधन के बाद वे उनके उत्तराधिकारी हुए। उनका सर्वेश्वरवादी दृष्टिकोण नीचे लिखी कविता में अभिव्यक्त किया गया है। वह खुद पृथ्वी है जिससे कुम्भार असंख्य पात्र बनाता है। उसके सृजन में आश्चर्यजनक विविधता है। नाम स्वर्ण के समान है, अलंकार बनने के बाद वह भिन्न दिखता है, किंतु वह शुद्ध है या अशुद्ध उसका आधार स्वयं स्वर्ण है। फेन, बुलबुला, प्रवाह और लहर कई है। यह समझ लो कि पानी तो वही है, चाहे वह खरा हो या मीठा। आत्मा की एक ही जाति है, यह भीखा का मत है। लुटेरे उसकी सरकार के हैं और यात्री भी उसी के हैं। पलटू दास फैजाबाद जिले में नागपुर जलालपुर गांव के निवासी थे। वे कंदू बनिया समुदाय के थे और भीखा की विचारधारा के थे। नीचे लिखी पंक्तियां उनके जीवन के बारे में बताती हैं। पलटू दास कहता है कि उनका जन्म नंगा जलालपुर में हुआ और उसने अवध में निवास किया। उसके जन्म से दुनिया में हलचल मच गई। उसने चार जातियों को नष्ट कर दिया और भक्ति की नींव रखी और गुरु गोविंद के उद्यान में पलटू नामक पुष्प खिला। वह जलालपुर शहर में साधु हो गया और अवध में उसने अपने कमरबंद को तोड़ दिया। पलटू कहता है, ईश्वर हृदय में संवाद करता रहता है और वह सहज व्यापारी है। वे सूफी विचारों से उतने ही परिचित थे जितने कि कबीर, और उन्होंने दोनों धर्मों में उसी प्रकार का समन्वय बनाने की कोशिश की जैसा कि उनके महान पूर्ववर्ती संत ने किया था। वे कहते हैं, मैं नासूत मलकूत और जबरूत को जानता हूँ, मैंने लाहूत के स्वाद का आनंद लिया है। परिपक्व भक्त वह है जिसका हृदय प्रकाशित है और जो अनंत घर में आसान जमाता है और जो अनंत घर में आसन जमाता है। स्वर्ग का रहस्य खुल गया है और आत्मा हक हक कहकर हृदय में रोती है। पलटू दास कहता है, वह हर क्षण और हर तरफ मक्का देखता है। और हिंदुओं और मुस्लिमों के संबंध में वे कहते हैं, वे पूर्व में राम कहते हैं और पश्चिम में खुदा, फिर उत्तर और दक्षिण में कौन रहता है? ईश्वर कहाँ है और वह कहाँ नहीं है? हिंदू और मुसलमान तूफान क्यों मचाते हैं? हिंदू और मुसलमान झगड़ने में मशगूल हैं, दोनों धर्म दो विरोधी शिविरों में हैं। पलटू दास कहता है ईश्वर सब में है, वह बिल्कुल विभाजित नहीं है, यह सच है। यहाँ हिंदू धर्म के प्रगतिशील सुधारकों का विवरण समाप्त होता है। यह पहले ही देखा जा चुका है कि भारत में धार्मिक नेताओं के दो वर्ग थे। पहले में कवि, नानक और अन्य थे जिनके जीवन के बारे में ऊपर लिखा गया है, और दूसरे वर्ग के वे लोग जिनके विचार ज्यादा रूढ़िवादी थे। इन रूढ़िवादियों में से कुछ राम के उपासक थे और अन्य कृष्ण और राधा के उपासक थे। सभी मानव समाजों में विभिन्न आध्यात्मिक जरूरतों वाले लोगों के समूह होते हैं। उदाहरण के लिए, एक समूह के लिए ईश्वर के बारे में केवल परम तत्व के रूप में सोच सकता है, और उनका बौद्धिक पूर्वग्रह उस अवधारणा से हर मानवीय गुण को अलग रखता है। किंतु एक अन्य समूह भी है जो अनन्य रूप से ऐसे ईश्वर की आवश्यकता महसूस करता है जो कुछ उनके ही समान हो, जो केवल अमूर्त अव्यक्तिक तत्व और एक अमूर्त अव्यक्तिक चेतना, आदेश या प्रेम नहीं है, बल्कि जो व्यक्तिगत एक गुरु, एक शासक, एक पिता, एक प्रेमी है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें और भी ठोस व्यक्तित्व की आवश्यकता है जिस पर वे आश्रित रह सकें। एक ऐसा व्यक्ति जो उनके समक्ष एक आदर्श के रूप में खड़ा हो सके, या एक ऐसा व्यक्ति जिसके इतिहास में वे जीवंत रुचि ले सके। संक्षेप में, ईश्वर का एक अवतार जो मनुष्य के बीच में निवास करता है और मनुष्य के दुख, क्लेश और बोझ में हिस्सेदारी करता है। हिंदू पहले वर्ग को निर्गुण उपासक कहते हैं, चाहे उनका मार्ग कर्म हो या ज्ञान का या भक्ति का, और दूसरे समूह को सगुण ब्रह्म का उपासक कहते हैं। इनमें कुछ अवतारों पर विश्वास करते हैं और कुछ नहीं करते। परम तत्व भावातीत या सर्वव्यापी या दोनों हो सकता है। प्रगतिशील सुधारक सामान्यतः ऐसे परम तत्व के उपासक थे जो भावातीत भी था और सर्वव्यापी भी। और चूंकि मुस्लिम सूफियों की ईश्वर की धारणा ऐसी ही थी, ये दोनों पास आए और उन्होंने देखा कि उनके धर्मों में कोई अनिवार्य अंतर नहीं है। हिंदुओं में दूसरा समूह शिव और विष्णु का उपासक था। विष्णु के उपासक विष्णु के दो रूपों, राम या कृष्ण के उपासक थे। मुस्लिमों में उनके समान लोग थे जो ईश्वर को मालिक और शासक के रूप में देखते थे। किंतु इन दोनों के लिए एक समझ बनाने की कोशिश करना असंभव था, क्योंकि दोनों ही अपनी धार्मिक पुस्तकों, प्रेरित और अकाट्य आदेशों और दैवी रूप से मान्य अनुष्ठानों तथा संस्थाओं की अटल व्यवस्थाओं के पीछे लामबंद खड़े थे। इस समूह में मुख्यतः रूढ़िवादी थे, दोनों ओर के विद्वान थे और वे पुरोहित थे जिनके हित एक विशेष समाज और आर्थिक प्रणाली को बनाए रखने में निहित थे। किंतु भारत में इस्लाम की उपस्थिति उन्हें भी प्रभावित किए बिना न रही, तथा उनके कुछ पहलुओं पर उसका प्रभाव दिखता है। पिछले एक अध्याय में यह दिखाया गया है कि किस प्रकार हिंदू धर्म ने दक्षिण में इस्लाम के प्रति प्रतिक्रिया दिखाई थी, कैसे इस्लाम के साथ संपर्क ने उनके एकेश्वरवाद की गति बढ़ा दी थी, जातिगत भेद को हटाने की प्रवृत्ति दी थी, भक्ति के आंदोलन को शक्तिशाली बनाया, गुरु के बारे में उसके सिद्धांतों में नए तत्वों का समावेश किया, संप्रदाय को बिना हटाए उसकी कठोरताओं को नरम किया था और लोक भाषा के उपयोग को प्रोत्साहित किया था। उत्तर में वे ही तत्व प्रकट हुए, राम को सर्वोच्च उपास्य देवता मानने वाली और कृष्ण को मानने वाली दोनों विचारधाराओं के साहित्य का विस्तार से विश्लेषण करने की शायद ही जरूरत है। रामानंद और वल्लभ ने उत्तर में दोनों संप्रदायों की स्थापना की, किंतु उनके विचारों के हिंदी में श्रेष्ठतम व्याख्याकार तुलसीदास और सूरदास थे। दोनों ने हिंदू मस्तिष्क को अत्यंत प्रभावित किया, किंतु चूंकि इस प्रबंध का उद्देश्य हिंदू धर्म में विकसित सभी संप्रदायों का वर्णन करना न होकर केवल उनका वर्णन करना है जिनमें इस्लाम का स्पष्ट प्रभाव दिखता है, वे इसकी परिधि के बाहर बैठते हैं। तथापि यह कहा जा सकता है कि तुलसीदास और सूरदास दोनों की भाषा इस प्रभाव के स्पष्ट प्रभाव प्रदर्शित करती है, क्योंकि दोनों ऐसे अनेक शब्दों का उपयोग करते हैं जिनका चलन मुस्लिमों ने किया था।